ओम शांति। यूनान में एक दार्शनिक हुए थे सुकरात। उन्होंने लिखा है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से अधिक ज्ञानी इस संसार में और कोई नहीं है। इस संसार में अब मेरे लिए जानने जैसा कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो मुझे ऐसा पता चला कि इस संसार में जानने जैसी बहुत सारी चीजें और हैं। मैं जितना जानता हूं वो पूर्ण नहीं है। और जब मैं बूढ़ा हुआ अब, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। और जब उसको ऐसी अनुभूति हुई, उसी समय वहां का जो मंदिर था डेल्फी का, या फिर वो डेल्फी के जो देवता थे, उन्होंने यह घोषणा की कि सुकरात जो है वो इस संसार का सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति है, महाज्ञानी है। वो लिखता है कि सारी उम्र मैं ये चाहता था कि वो डेल्फी का देवता यह घोषणा करे कि मैं सबसे ज्ञानी हूं। तो शायद मुझे अब लगता है जब मुझे यह परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, ये जानना ही क्या है, परम ज्ञानी बनना। तो ऐसा जब हुआ तभी उसको महाज्ञानी की उपाधि प्राप्त हुई। तो ज्ञान जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको आज बाबा ने क्या कहा, ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, आज की मुरली में क्या है, दर्पण। क्या कहा आज बाबा ने, नॉलेज जो है वो है एक दर्पण जिसमें स्वयं को देखते रहना है, बार बार देखते रहना है। जब तक इस दर्पण को हम नहीं देखते तब तक हमें यह आभास नहीं होगा कि हम कहां हैं। तो ज्ञान की उपमा अध्यात्म में दर्पण से की जाती है। तो जितना हम इस ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखते रहेंगे उतना ही हमारी उन्नति होती रहेगी। तो ये जो दर्पण है इसमें क्या देखना है, आज की मुरली से, आज की मुरली तो सुनी ना सबने, तो क्या देखना है इस दर्पण में, अपने संगम योगी स्वरूप को देखना है और सतयुगी स्वरूप को देखना है, वर्तमान को देखना है और भविष्य को देखना है, क्योंकि भविष्य का आधार क्या है, वर्तमान है। कलाएं कितनी हैं, श्रृंगार कितने हैं, स्व को दर्पण में देखो, स्व के दर्पण में देखो। और क्या करो, देखो और चेक करो क्या क्या कमी अब भी रही हुई है। तो इस दर्पण में बार बार देखना होता है, एक बार देखने से नहीं होगा। हमारी बुद्धि में बार बार ज्ञान का मनन और ज्ञान का चिंतन होते रहे, इसी को कहा जाएगा बार बार इस दर्पण में स्वयं को देखना। अगर वर्तमान में कोई चीज है तो भविष्य में वो निश्चित है। इसके लिए भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है। चिंता हमें अतीत की नहीं करनी है और ना ही भविष्य की चिंता करनी है, या फिर ध्यान देना है अब पर, अब अर्थात नाउ। पाश्चात्य जगत में एक लेखक है इकहार्ट टोल, उसने किताब लिखी है पावर ऑफ नाउ। उसमें एक बहुत सुंदर बात कही है कि हमें जीना है नाउ में, अब में, पर हम जीते हैं भविष्य की कल्पनाओं में, और जो कि अतीत है उसमें, जो कि मुर्दा है, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा वो अतीत वास्तव में देखा जाए, अतीत और भविष्य भ्रांति मात्र है, क्योंकि अतीत अब है नहीं और भविष्य केवल एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है। अब का जो नाव है उसी में शक्ति है और उसी में पावर है। इसके लिए जीना किस में है, अब में जीना है। किसी ज़िन मास्टर ने अपने एक शिष्य को भेजा एक सराय में और कहा कि जाओ अध्यात्म की शिक्षा इस सराय से लेकर आओ। उसे आश्चर्य हुआ, इस सराय में मैं क्या सीखूंगा। वो जाता है सराय में और देखता है लोग वहां पर कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, परंतु वहां का जो मालिक है और वहां का जो आईना है, वहां का मालिक उस आईने को बार बार साफ करता है। सुबह साफ करता है, दोपहर में साफ करता है, रात में साफ करता है। ये शिष्य सोचता है कि मैं यहाँ क्या सीखूंगा। सुबह से लेकर रात तक वहां रहता है और फिर उस मालिक से पूछता है कि आप ये आईना बार बार क्यों साफ करते हो। वो कहता है क्योंकि इस आईने में प्रतिपल धूल जम रही है। एक बार साफ करने से नहीं होगा, शिष्य के हृदय में या उसके मस्तिष्क में जैसे प्रकाश आता है और समझता है कि हमारा जो मन है वह भी इस आईने की तरह है, जहां पर हर पल प्रतिपल क्या हो रहा है, धूल जम रही है। किसकी धूल? विकारों की धूल, व्यर्थ की धूल, अतीत की धूल, भविष्य की चिंताओं की धूल। इसके लिए इस दर्पण को निरंतर स्वच्छ करते रहना है। एक बार स्वच्छ करने से नहीं होगा। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? वृक्षपति बाप किसको देख रहा है? अपने बच्चों को। बाबा ने क्या कहा? अपने पहले पहले पत्तों को देख रहा है। कौन किसको देख रहा है? वृक्षपति बाप देख रहा है, अपने वृक्ष के पहले पहले पत्तों को देख रहा है। तो हम सभी कौन है? इस वृक्ष के पहले पहले पत्ते। हम सभी कौन है? नए वृक्ष की कलम। हम सभी कौन? एक एक ब्राह्मण आत्माएं अमूल्य आत्माएं है। एक एक ब्राह्मण आत्माएं कैसी आत्माएं? आधार मूर्त आत्माएं है। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो छोटे हैं, हम तो अभी अभी आए हैं, पीछे आए हैं, जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं। आज की मुरली अगर देखा जाए उसमें तीन तीन बातें बहुत बार कही है बाबा ने, तीन तीन बातों का समूह है। तो तुम कहते हो कि तुम छोटे हो, परंतु वर्षा लेने में अधिकार, वर्षा लेने में हक। कौन सा वर्षा? वो भी सतयुग का वर्षा। कौन सा वर्षा? सूर्यवंश का वर्षा। चंद्रवंश का वर्षा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वर्षा, दूसरा प्राप्ति और तीसरा बाप। तो बाप, प्राप्ति और वर्षा की जब बात आती है तब क्या कहते हो? बाप हमारा है, हम छोटों का है, बाप का प्यार हमारे से ज्यादा है। तो जैसे यहां अधिकार है, वैसे ही तुम एक एक आत्माएं जिम्मेवार आत्माएं हो। तो एक एक की जिम्मेवारी का अधिकार, एक एक साथी है। अगर वृक्ष की कलम कमजोर रह जाए तो क्या होगा? सारा ही वृक्ष भी कमजोर रह जाएगा। इसके लिए इस सृष्टि के हम कौन है? आधार मूर्त है, पहले पहले पत्ते, आधार मूर्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, अमूल्य आत्माएं, इतने सारे सम्मान दिए बाबा ने। अगर हम में कमजोरी रह जाए तो पूरे वृक्ष में कमजोरी होगी। हम में यदि विकारों के अंश रह जाए, हम में यदि व्यर्थ रह जाए, हम में यदि वासनाएं शेष रह जाए, तो इस संसार का भी यही हाल होगा। आज कहा ना, संसार का क्या हाल हो गया है, जब है ही असार संसार, तो इसमें सार कहां से? यहाँ के साधन भी सार रहित, सार विहीन है। बाप तो सुन रहे तुम्हारा गीत, भक्तों का गीत, बाप को ही बोलते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत। तो बाबा ने आज कहा बाप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं ये भक्तों का गीत। तो हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। किस चीज की जिम्मेवारी? जिम्मेवारी का की तुलना किससे की है बाबा ने? ताज और तीन बातें, ताज, तख्त और तिलक। कौन सा ताज और कौन सा तख्त और कौन से तिलक की बातें कर रहा है बाबा? ताज कौन सा है? कौन सा ताज है? हमेशा आता है मुरलियों में, पवित्रता का ताज है, सेवा का ताज है, पढ़ाई का ताज है, विश्व परिवर्तन का ताज है और स्व परिवर्तन का ताज, डबल ताज बाबा ने कहा। एक तो प्यूरिटी का और दूसरा प्रैक्टिकल में पढ़ाई। पढ़ाई का ताज क्या होता है? पढ़ाई का ताज किसे कहेंगे? पढ़ाई का ताज, अभी की जो पढ़ाई है उसका ताज क्या? पढ़ाई को धारण करना, पढ़ाई का स्वरूप बनना, पढ़ाई का मनन चिंतन अध्ययन करना, पढ़ाई को अपने जीवन में धारण करना, पढ़ाई का ताज, सेवा का ताज, स्व परिवर्तन का ताज, जिम्मेवारी विश्व परिवर्तन का ताज। तो जिम्मेवारी यह ताज है। यहां अगर ताज अधूरा तो वहां अधूरा, यहां अगर संपूर्ण नहीं तो वहां संपूर्ण नहीं, यहां अगर सिंगल ताज तो वहां सिंगल ताज, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान है। भविष्य का आधार क्या है? वर्तमान। भविष्य को देखो और वर्तमान को देखो, दोनों को देखो। बार बार बाबा ने कहा है कि अब हमारी स्थिति क्या है, उसी अनुसार वहां की स्थिति होगी। तो सबसे पहला है ताज, दूसरा है ताज और दूसरा तख्त। कौन सा तख्त? यहां पर अकाल तख्त और बाप दादा का दिल तख्त, यहां पर डबल तख्त, और इन दोनों तख्त का भी संबंध है। अभी जो अकाल तख्त है आत्माभिमानी स्थिति में है, वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, वही परमात्मा को अति प्रिय है। तो जो अकाल तख्त है वही दिल तख्त, और यहां अगर तख्त नशीन है तो वहां पर राज्य तख्त नशीन होंगे। यहां सिंगल तख्त तो वहां भी सिंगल, तो यहां भी डबल तख्त नशीन है हम। तो दूसरा था तख्त और तीसरा तिलक, तिलक और सुहाग, देवों के देवों का सुहाग और ईश्वरीय संतान है, यह क्या है? भाग्य का तिलक। तो ये तिलक अविनाशी बाबा ने कहा, ये तिलक कैसा हो? अमिट हो, माया इसको मिटाने की कोशिश न करे। तो भाग्य की निरंतर स्मृति हो। भाग्य के बारे में आज की मुरली में और क्या कहा बाबा ने? तुम सब कौन है? पार्टी नंबर 3, कोटों में कोई और कोई में कोई आत्माएं हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। ये तीन बातें, और तीन बातें वहां पर बताई। फिर एक है मानना, जानना और महसूस करना। क्या ये ज्ञान के आधार पे माना है केवल, या फिर दूसरों के अनुभव के आधार से जाना माना है, और तीसरा स्वयं के अनुभव के आधार से महसूस किया है? कौन सी बात? कोटों में कोई और कोई में कोई। कितना बड़ा भाग्य है यहां पहुंच जाना, बाबा का बन जाना, उसकी छत्र छाया का अनुभव करना। पुराणों में दिखाया है, एक भक्त व्यक्ति था, एक बार उसका बेटा जो था वो बीमार पड़ गया, बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। तो किसी साधु ने कहा, यह ठीक हो सकता है परंतु एक शर्त है, यदि स्वाति नक्षत्र हो, यदि उस स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो रही हो और उस वर्षा के समय में किसी जंगल में एक मनुष्य की खोपड़ी हो और उस खोपड़ी में थोड़ा सा वर्षा का जल हो और उस जल में उस खोपड़ी में एक मेंढक कूद कर आ जाए, परंतु उसके पीछे फिर एक विषधर सांप आ जाए उसको पकड़ने के लिए, और मेंढक छलांग मार के आगे चला जाए और सांप का जो विष है उस जल में गिर जाए, यदि वो जल, यदि वो पानी इस बच्चे को पिलाया जाए तो यह ठीक हो सकता है। इतनी बड़ी शर्त थी। वो भक्त व्यक्ति था, व्याकुल हुआ, पंचांग खोला और देखा कि आज ही स्वाति नक्षत्र है। प्रार्थना करते हुए चल पड़ा जंगल की ओर, और प्रार्थना करने लगा तो उस समय ही फिर बारिश होने लगी, और भगवान को धन्यवाद दिया, एक के बाद एक योग जुड़ने लगा। और जंगल पहुंचा और देखा तो बहुत खुश हुआ, सामने ही झाड़ के नीचे एक मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी और उसमें स्वाति जल था वर्षा का। बहुत खुश हुआ, अभी और तीव्रता से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु इतना तो कर दिया, अभी आगे की जो शर्त है वो भी अगर तू चाहे तो जाय विधि होई सोई जो राम रचि रखा, अगर तू चाहे तो वो भी हो जाएगा। और उसी समय एक मेंढक उछलता हुआ उस खोपड़ी में आता है और उसके पीछे एक सांप, और जैसे ही सांप आता है मेंढक छलांग मार कर आगे जाता है और सांप का विष उस जल में गिरता है। असंभव सी घटना थी परंतु उसका विश्वास, उसका जो भरोसा था, आज कहा ना एक पार्टी में, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय था उसको फेथ और विक्ट्री, ऐसा उसका विश्वास था कि इतनी सारी असंभव घटनाएं संभव हो गई। हमारा बाबा से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना भी कैसी कैसी घटनाएं हैं, असंभव सी घटनाएं हैं। अगर देखा जाए तो सदियों से आत्माएं भगवान को पाने का प्रयत्न कर रही, यहां तक कि आज के इस समय में, आज के इस दिन में भी कितनी भक्त आत्माएं तड़प रही है और कितने ही साधु और योगी और तपस्वी हिमालय की कंदराओं में और गुफाओं में उसे प्राप्त करने के लिए तपस्यारत है, परंतु प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वह उपलब्धि उन्हें नहीं हो पा रही है। यह मिलन अमूल्य मिलन है, यह मिलन वंडरफुल मिलन है, यह मिलन अचानक की लॉटरी है, यह मिलन दिल में छप जाने वाला मिलन है, यह मिलन विशेष मिलन है, यह मिलन विचित्र मिलन है। पिछले सीजन की सारी मुरलियां, कोटो में कोई और कोई में कोई, उसको पहचान लेना, उसको जान लेना और स्व अनुभव से महसूस करना कि वह हमारा है, ये भाग्य है, बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा भाग्य। तो पहला है ताज, तो दूसरा है तख्त, और तीसरा था तिलक, तिलक और सुहाग, देवों के देवों का सुहाग, और भाग्य ईश्वरीय संतान होने का, ईश्वरीय औलाद होने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। यह भाग्य अविनाशी हो, यह तिलक कभी मिटे ना, माया इसे मिटाने का प्रयत्न ना करे। तो तीसरा है तिलक, यहां यदि तिलक हो तो भविष्य में भी राजा के पास तिलक होगा और रॉयल फैमिली उसके पास भी तिलक होगा, और हर जन्म में क्या होगा, तिलक दिवस मनाया जाएगा, राज्य तिलक दिवस, वहां राज्य तिलक दिवस का उत्सव होगा। और यहां फिर तीन बातें होगी उत्साह की, वहां उत्सव, यहां उत्साह की, तीन बातें और कही बाबा ने, कौन सी, सभी ने मुरली सुनी है, सबसे पहला उत्सव कौन सा, बाप से मिलन मनाने का उत्सव, दूसरा स्व की चढ़ती कला का उत्सव, और तीसरा तन मन धन जन की सेवा करने का उत्सव, ऐसी तीन बातें। तो स्व की चढ़ती कला का उत्सव, हमारी अध्यात्म के इस पथ में उन्नति हो रही है, यह ऐसा स्व अनुभव हो, यह है चढ़ती कला का अनुभव। जो हम कल थे उससे आज हम आगे हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी है, बहुत ही ऊंची और सबसे बड़ी परिभाषा है वो, जो स्थिति तुम्हारी एक सेकंड पहले थी और अब की जो स्थिति है वो उससे आगे हो, ये है तीव्र पुरुषार्थ। जो गलती एक बार हो चुकी है जीवन में, वो गलती फिर से ना हो, ये है तीव्र पुरुषार्थ। ये किसी और एक मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की ऐसी दो अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो स्व की उड़ती चढ़ती कला का अनुभव, ऐसा नहीं कि जो गलती हमने की है वो करते ही रह रहे। महाभारत में दिखाया है, युधिष्ठिर से जब वो यक्ष पूछता है कि आश्चर्य की बात कौन सी है, चारों पांडव मर चुके हैं और युधिष्ठिर से पूछता है तो युधिष्ठिर यही कहता है कि मनुष्य अपने जीवन में इतने सारे अनुभव से गुजरता है परंतु उनसे कभी सीखता नहीं है। यही दुर्भाग्य की बात है। कितना कुछ सीखा जीवन में, एक बार अमृत वेला मिस हुआ, सीखा जीवन में कि ये कारण था, अमृत वेला इस वजह से मिस किया, परंतु बार बार वैसा ही होते रहता है। आज अमृत वेला नींद आई, उसका चिंतन करने के बाद पता चला ये कारण था, परंतु वो गलती फिर करते ही रहता है मनुष्य। आज साधारण हुआ, कारण को ढूंढा, कारण पता चला, फिर भी वही गलती फिर क्यों ऐसा। प्रतिपल, टुडे शुड फाइंड अस अहेड ऑफ यस्टरडे, टुमारो शुड फाइंड अस अहेड ऑफ टुडे, दिस इज इंटेंस एफर्ट मेकर। तीव्र पुरुषार्थ की यह परिभाषा है। तो बाबा कह रहे हैं तन मन धन, तीन बातें। तन, अब तक तन को सेवा में कितना लगाया और अब से अंत तक कितना लगाएगा उसकी चेकिंग, एक। दूसरा मन, मन को मनसा सेवा में कितना लगाया, मनसा सेवा भी हद की और बेहद की, ऐसा नहीं सबके प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। दादी से मुलाकात, आज की मुरली, दो प्रकार की सेवाएं, मनसा की और वाचा की, दोनों ही सेवा कंबाइंड हो, सिंगल होगा तो सिंगल रिजल्ट, डबल होगी तो डबल रिजल्ट। मनसा में, वाचा में भी, वाणी में भी मनसा की सेवा होती रहे, और मनसा में भी बोल की ना हो, यह ना हो, यह है अंतिम पावरफुल सेवा, मनसा सेवा। तो दूसरा पॉइंट था, पहला तन, दूसरा मन, और तीसरा धन। धन भी स्वार्थ में ना लगाओ, स्वार्थ में लगा रहे हो कि परमार्थ में लगा रहे हो, अमानत में ख्यानत तो नहीं कर रहे, उसमें भी हद में लगा रहे हो या बेहद में लगा रहे हो। तो फिर से तीन बातें, तन मन और धन, ये सेवा की। अगर ऐसा होगा उसी आधार से फिर भविष्य में पद प्राप्त होगा। उसमें फिर और तीन बातें, फुल प्रारब्ध फुल, समय फुल और राज्य भाग्य फुल। उसमें और तीन बातें, एक 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 संवंत, प्रारब्ध एक, वन प्रारब्ध, नंबर वन का प्रारब्ध, और प्रकृति के सुख भी वन। बाबा ने फिर से कहा स्वयं को चेक करो, स्व के दर्पण में स्वयं को देखो, वर्तमान को देखो और भविष्य को देखो। 16 कला संपन्न कितना बना है वो देखो, 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार की बात की बाबा ने। कौन से 16 श्रृंगार? जो अब होंगे तो तब होंगे, चिंतन करके बहुत सारे निकाल सकते हैं। भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार का बहुत गायन है। बिंदी किसकी? आत्मिक स्मृति की। तिलक भाग्य का। कुंडल कई जगह कईयों ने कई सारा चिंतन कर अलग अलग निकाले हैं। एक बाप से ही सुनो, नथनी एक बाप, दूसरा ना कोई, और हार माताओं को ज्यादा पता रहना चाहिए। हार कौन सा? कौन सा हार? वैजंती माला, विजय रत्न होने का वैजंती माला का हार, या फिर दिव्य गुणों का हार भी कह सकते हैं। बाजूबंद, बाप के कार्य में मददगार, कमरधनी वो कौन सा? दृढ़ता की। घुंघरू खुशी के, और भी कोई है श्रृंगार? पायल, घुंघरू पायल एक ही चीज है। उसके बाद अंजन, अंजन कौन सा? ज्ञान अंजन। उसके बाद में क्या कहा? हाथ का कंगन, मर्यादाओं का कंगन। अंगूठी किसकी? अष्ट शक्तियों की। तो अंगूठी, कंगन, बाजूबंद, हार और लाली, लाली भी है ना, मुख में, होठों पर अधरंजन, अधरंजन होता है ना, लिपस्टिक, मधुर बोल या फिर मुस्कान। तो बहुत सारी बातें हैं इस तरह से। चिंतन उस पर किया जा सकता है। 16 कलाओं की बात की है बाबा ने। 16 कला कौन सी संगम युग की? 16 से बहुत सारी हो सकती है, अमृत वेले से चालू करो रात तक। कौन कौन सी कलाएं हैं यहाँ? अगर 16 सतयुग की 16 कलाएं नहीं, यहाँ की 16 कलाएं कौन सी? सुनने की कला, बोलने की कला, देखने की कला, नेतृत्व करने की कला, प्रशासन करने की कला, बहुत सारी कलाएं चिंतन कर निकाला जा सकता है। योग करने की कला, मुरली सुनने की कला, और दूसरों को सिखाने की कला, दूसरों को अपना बनाने की कला, और पत्र लिखने की कला या फिर लिखने की कला, समाने की कला, बहुत सारी चिंतन करके निकाली जा सकते हैं। तो जो अभी वर्तमान में होगा तो भविष्य में होगा, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान है। तो इस वर्तमान को ही श्रेष्ठ करना है, श्रेष्ठ बनाना है, जो कमी हम में है उसे निकालना है। यहाँ पर बाबा ने मुरली पूर्ण की। फिर बिजली जाने की बात, जिसमें बाबा ने कहा संसार की हर वस्तु हर साधन कैसा है? असार है। असार संसार है तो साधनों में सार नहीं है, इसके लिए हमारी साधना जो है वो इन असार साधनों पर निर्भर ना हो। लास्ट सीजन की जो मुरलियां थी उसमें बाबा ने एक बात और कही थी कि सारे ही साधन मिल जाए इस कलयुग में ये भी असंभव है। तो साधन मिले या न मिले, मिले तो भी यह जानना कि यह असार है, और हमारी साधना का आधार आश्रय यह साधन नहीं है। उसके बाद बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। सबसे पहली पार्टी, उसमें क्या कहा बाबा ने कि सबसे बड़ा खजाना कौन सा मिला है तुम्हें? बाप ही सबसे बड़ा खजाना है, इससे बड़ा खजाना और कोई है ही नहीं। अमृत वेले जब हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करें तो इस समान को याद लाए कि बाप जो है ज्योति बिंदु है, परंतु वो ज्योति बिंदु कैसा है? इस संसार का सबसे बड़ा खजाना है। जितना भी ज्ञान हमें चाहिए सारा ही उस ज्ञान के सागर से मुझ आत्मा में समा रहा है, क्योंकि यही सबसे बड़ा खजाना है। ये प्रेम का सागर है, जितना ही प्रेम चाहिए उस ज्योति बिंदु से मुझ आत्मा में समा रहा है। बाप मिला सब कुछ मिला, जहां बाप नहीं वहां कुछ भी नहीं। सतयुग में भी यह खजाना नहीं होगा, तो तुम्हें सबसे बड़ा खजाना है। तो स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो, संपन्न अर्थात कौन सा गीत है हमारा? कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं हम ब्राह्मणों के खजाने में, यह हमारा गीत है। और नाचना किस खुशी में है? क्योंकि बालक बन गए तो बालक बनना ही क्या है? मालिक बनना है। तो बालक सो मालिक, ये क्या है? नाच है हमारा, इसी खुशी में नाचते रहना है। परंतु ये अनुभव फिर भी इतना ही प्रगाढ़ हो, इतना ही सघन हो, जो तीन बातें तीसरी सेकंड पार्टी में कही ना, तीसरी पार्टी में, कि कोटों में कोई और कोई में कोई। सबसे पहला है ज्ञान के आधार से, दूसरा है दूसरों के अनुभवों के आधार से मानना, और तीसरा है स्वयं के अनुभव के आधार से महसूस करना। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हमारे खजाने में या मेरे खजाने में, और मैं बालक ही मालिक हूँ, पहला। दूसरा, दूसरे में बाबा ने निश्चय की बात की है। निश्चय है तो विजय है। कौन सा निश्चय? इन्हीं में बाबा ने तीन टाइटल दिए, अचल, अडोल और महावीर। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? तीन बातें, अचल, अडोल और महावीर। व्यर्थ संकल्प में भी नहीं और स्वप्न में भी नहीं। जो कुछ हो रहा है इस ड्रामा में उसमें क्या है? कल्याण है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। ये ड्रामा कैसा है? न्यायकारी है। इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसमें क्या है? कल्याण है, परम कल्याण है, केवल कल्याण नहीं। हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, परंतु वो हुई, इसके लिए आज हम यहाँ हैं। वो हुई इसके लिए आज हमारे मन की स्थिति ऐसी परिपक्व है या शक्तिशाली है। उस अनुभव के आधार से यदि वो अनुभव जीवन में ना आया होता तो शायद हमारे अंदर जो परिपक्वता है, जो प्रौढ़ता है, वह आज नहीं होती। कोई एक भक्त था, वो इतना अनन्य भक्त था, इतना अनन्य भक्त था कि उसकी एक आदत थी कि राम की इच्छा से जो कुछ उसके जीवन में होता था वो क्या कहता था, राम की इच्छा से। वो कपड़े बेचता था, कपड़े भी जब बेचता था तो ऐसा कहता था कि राम की इच्छा से इस कपड़ों को खरीद लो। और कोई पूछता था इस वस्त्र के दाम कितने हैं तो कहता था कि राम की इच्छा से इस वस्त्र के दाम 4 आने हैं। 3 आने जो है वो इस वस्त्र के हैं 50, और बाकी के जो है कुछ मेहनत के हैं, कुछ मुनाफे के हैं, ये सारा ही राम की इच्छा से। एक बार दिखाया है कि अपना काम करके घर आता है, भोजन करता है और बरामदे में बैठकर प्रभु के गुण गाते रहता है। उसी समय डाकुओं की एक टोली वहां से गुजरती है और वो देखते हैं कि अच्छा आदमी है, इसको पकड़ के लेके जाते हैं, जो लूट हम करेंगे इसके ऊपर लाद देंगे, कूली के काम आएगा। उसको पकड़ के ले जाते हैं अपने साथ, किसी घर में डाका डालते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं और वो सब उसके सिर के ऊपर रखते हैं उसको लेके जाने के लिए। उसी समय वहां राजा के सिपाही आते हैं, दिखाते हैं, वो डकैत तो सारे भाग जाते हैं और बेचारा ये भोला भाला भक्त पकड़ा जाता है और फंसता है। उसको लेके जाके रात भर कारागृह में रखते हैं और सुबह सुबह हाकिम जो कि वहां को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब गांव वाले ये सुनते हैं तो गांव वाले आकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही भोला भाला व्यक्ति है, ये तो ऐसा कृत्य कभी नहीं कर सकता है। तो वो जो हाकिम है वो उससे पूछता है सारी घटना को विस्तार से बताओ। तो वो भक्त कहता है कि राम की इच्छा से सारा दिन काम किया, राम की इच्छा से घर पहुंचा और राम ही की इच्छा से भोजन किया और राम ही की इच्छा से बरामदे में बैठकर प्रभु के गुणगान, उसी का गुणगान कर रहा था और राम ही की इच्छा से उस समय कुछ डकैत वहां आ गए और राम ही की इच्छा से उन डकैतों ने मुझे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए और राम ही की इच्छा से उन डकैतों ने किसी घर में डाका डाला और राम ही की इच्छा से उन्होंने वो सारा सामान, वो सारा खजाना मेरे सर के ऊपर रखा और राम ही की इच्छा से उसी समय राजा के सिपाही आ गए और राम ही की इच्छा से वो सारे डकैत भाग गए और राम ही की इच्छा से मैं पकड़ा गया और राम ही की इच्छा से सारी मुझे फिर कारागृह में डाल दिया गया और राम ही की इच्छा से सारी रात कारागृह में रहकर हुजूर अभी मैं आपके सामने हूं। जैसे बाबा चलाए वैसे चलेंगे, जैसे बाबा कराए वैसे करेंगे, जो हो रहा है उसी में कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। वो भक्त का कितना निश्चय था। वो हकीम कहता है इतना भोलापन, ऐसा व्यक्ति तो कभी इस तरह की चोरी, इस तरह की डकैत कर ही नहीं सकता। और वो हकीम उस भक्त को छोड़ देता है और जब वो हकीम बाहर निकलने लगता है तो अपने मित्रों से कहता है कि राम ही की इच्छा से आज मैं छूट गया। बाबा ने आज कहा वरदान में, जो साधारण है, जो सिंपल है और जो स्वच्छ है, जिनके संकल्प स्वच्छ है, जिनके संबंध स्वच्छ है, जो संबंधों में, संकल्पों में, आचार व्यवहार में और जो रहन सहन में और व्यवहार में सिंपल है, वही क्या हो जाते हैं, सैंपल बन जाते हैं और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि साधारणता में ही महानता है, साधारणता ही महानता को प्रत्यक्ष करती है। तो निश्चय विजय, व्यर्थ समाप्त, जो बाबा कराए उसमें कल्याण, हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी होकर सब कर्म करो। तो हर चीज में कल्याण दिखाई देगा। एक कालदर्शी होकर नहीं, दो कालदर्शी होकर नहीं, तीन कालदर्शी होकर हर कर्म करो तो हर चीज में कल्याण दिखाई देगा। और उतना ही फेथ, उतना ही निश्चय, भरोसा, निश्चय, श्रद्धा जैसे उस भक्त की थी, जैसे बाबा कराए वैसे करेंगे, जैसे वो चलाए वैसे चलेंगे। जी हुजूर और जी हाजिर, दो शब्द बाबा ने कहे, जी हुजूर और जी हाजिर। अगर है तो हल्का रहेंगे और उड़ते रहेंगे। तीसरी पार्टी से मुलाकात, जो कि हमने बोल दिया, उसमें ऐसे जो बच्चे हैं कोटों में कोई और कोई में कोई, उनकी निशानी क्या है? तो वो क्या होंगे? परवाने होंगे, चक्कर लगाने वाले नहीं, फेरी लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, मर मिटने वाले, जलने वाले, परिवर्तन होने वाले। ये परिभाषा है परवानों की, जो कि संपूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर देते हैं यज्ञ की वेदी पर, जिन्होंने अपने यौवन को समर्पित कर दिया। यज्ञ की वह आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं हो सकती, एक एक अमूल्य रतन है और एक एक महान आत्माएं। इसके लिए इस परिवार में भी किसी की अवगुण और कमजोरी देखने से पहले वो कौन है, किसने चुना है उसे, स्वयं भगवान ने उसका चुनाव किया है। न जाति देखी, न पाल रंग देखा, मेरा है बाबा ने यह देखा, किसी मुरली में आया था ना, परमात्मा द्वारा चुनी हुई वो आत्माएं हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य को उसने जीवन में धारण किया है, स्वयं के जीवन को ईश्वर के कार्य अर्थ समर्पित किया है, इस यज्ञ में अपना तन मन धन सब कुछ दिया है, वो साधारण कैसे हो सकती है? इसके लिए अवगुणों को देखने से पहले इस संकल्प को अपने मन में लाना। तो ये था दूसरा। तीसरा हमने बोल दिया। तीसरे में और एक पार्ट है जिसमें बाबा कह रहे एक रस स्थिति बनाने का साधन क्या है। एक रस स्थिति बनाने का साधन क्या है? एक शब्द में बताओ क्या है? ट्रस्टी। एक है ट्रस्टीपन, एक है गृहस्थीपन। गृहस्थीपन का संबंध विवाह से नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। विवाहित होना, अविवाहित होना, इसका गृहस्थीपन से संबंध नहीं है। गृहस्थीपन अर्थात जहां भी मेरा है, मेरा पन है, वह गृहस्थीपन है। मेरा घर, मेरा परिवार, सारा संसार छोड़ के आ गए, माँ बाप को छोड़ के आ गए, शहर छोड़ के आ गए, नौकरी छोड़ के आ गए, परंतु यहां आने के बाद यदि मेरा पद, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, मेरा मेरी शान, ये मैपन आना भी गृहस्थीपन ही है। तो गृहस्थीपन का संबंध विवाहित और अविवाहित होने से नहीं है। गृहस्थीपन अर्थात मेरापन, गृहस्थीपन अर्थात बोझ, भारीपन, गृहस्थीपन अर्थात मैं, ममता, और ट्रस्टी अर्थात हल्कापन। ट्रस्टी को हिंदी में न्यासी कहा जाता है, न्यासी। न्यासी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, उसी से सन्यासी शब्द निकला है। सन्यासी अर्थात जो वो समझता है कि संसार में मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी न्यासीपन की भावना अर्थात ट्रस्टीपन अर्थात हल्कापन अर्थात उड़ती कला। बाबा ने कहा गृहस्थीपन को यही छोड़कर जाओ, जो भी दुख की लहर फैलाने वाली बातें हैं उनको यहीं छोड़कर जाओ, जो भी सुख देने वाली बातें हैं उनको यहां से लेकर जाओ। तो ये था तीसरी पार्टी से मुलाकात, उसमें दो भाग थे। उसके बाद बाबा दादी से बात कर रहे हैं। बच्चों को खुश देखकर बाप दादा खुश होते हैं, कितनी अच्छा वाक्य है। और हमको दुखी देखकर, दुखी बाबा दुखी होता है तो हम बच्चों को खुश देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं। कहीं जाना अर्थात किसी के दिल को खुश करना अर्थात ये पुण्य का कार्य है। बाबा ने कहा ये जाना होते रहेगा। कब तक होते रहेगा? जब तक ड्रामा में है तब तक। उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का, साकार में भी तैयारी थी, जाना था पर गए नहीं। ये बात है जनवरी मास की, 69 की, जब हर सीजन में ठंडी के मास में बाबा मुंबई जाया करते थे, परंतु उस समय नहीं गए। जाना था, तैयारी थी, परंतु पार्ट नहीं था, समाप्ति थी, क्योंकि इस देह से अव्यक्त होना था, इसके लिए उस साल नहीं गए। नहीं तो जनवरी मास में बाबा मुंबई चले जाते थे। तो बाबा ने ये उदाहरण वहां दिया है, इसके लिए जाते रहो जब तक पाठ है। जब पाठ समाप्त होगा तो एक सेकंड में समाप्त होगा। और एक बात बाबा ने यहां की, भक्ति की, कि भक्ति की शुरुआत में, भक्ति में एक चीज होती है आह्वान करने की। अभी आपको जो आह्वान किया जा रहा है दादी को, 69 की बात है कि आओ हमारे पास, तो अंबाला में दादी को बुलाया है। तो बाबा कह रहे ये जो आह्वान करना है ये भी क्या है, जैसे कि नींव डालना है, ये भी आधार होगा, फिर वहां भक्त आह्वान करेंगे। जैसे जड़ चित्रों को यहां आह्वान करते हैं तो अनुभव होता है कि इनमें जान है, तो वैसे ही वहां आह्वान करेंगे। और फिर वही दो सेवाओं की बात की, दो प्रकार की सेवाएं, मनसा और वाचा। वाचा की सेवा करने वाले तो अभी बहुत थोड़े हैं बाबा ने कहा, परंतु जो बाकी लोग हैं वो मनसा सेवा कर सकते हैं, वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं। एकत्र हुए, मिलन जब होता है तब संगठन में मिलन होता है, तो इस मिलन में यहां वहां की बातें करने से ज्यादा क्या करो, वायुमंडल को पावरफुल बनाओ, मनसा सेवा करो। तो मनसा सेवा और वाचा की सेवा, मनसा सेवा है अंतिम पावरफुल सेवा, ये सेवा हमें रोज करनी है। और एक बड़ी सूक्ष्म बात कही है जिसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, वो आप सभी चिंतन करो। एक बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है, जब वाचा की सेवा करो तो मनसा की न हो ये नहीं हो, यहां तक तो बात समझ में आती है, परंतु बाबा ने कहा जब मनसा की सेवा करो तब बोल न हो ये भी नहीं हो। यह एक चिंतन का विषय है, इसका क्या अभिप्राय है इसके ऊपर थोड़ा सोचो, कि जब वाचा की सेवा चालू है तब मनसा की भी हो या मनसा की न हो ये नहीं हो, ये तो ठीक है, परंतु जब मनसा की सेवा कर रहे हो तब बोल न हो ये भी न हो। सभी इस पर चिंतन कीजिए। तो मुरली को यहीं विराम देते हैं। ऐसे क्या कहा बाबा ने याद प्यार में, ऐसे बेहद के सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे याद और सेवा के उमंग में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे राज्य अलंकारी आत्माओं को, ऐसे तिलक और सुहाग धारण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।